नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जल संरक्षण और संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने पश्चिम एशियाई देश में जारी अशांति के मद्देनजर नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों से ईरान को तुरंत छोड़ने का आह्वान किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और राजकोट में मेजबान भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी पीढ़ियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जल संरक्षण और संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम और अमृत सरोवर जैसी पहल को इसी भावना से प्रेरित बताया। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में ये बात कही।
धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं।
प्रधानमंत्री ने किसानों को राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अथक प्रयास कर रही है।
हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि पोंगल जीवंत तमिल संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है, जो प्रकृति, परिवार तथा समाज के साथ संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
हमारी तमिल संस्कृति पूरी मानवता की साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूँ, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है।
मीडिया से बातचीत में डॉक्टर एल मुरुगन ने उनके आवास पर पोंगल समारोह में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस बीच आज देशभर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू समेत अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं।
इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जी किशन रेड्डी और राम मोहन नायडू सहित कई अन्य नेता आज सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई अमृत भारत रेलगाड़ियां यात्रियों की सुविधा और यात्रा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को शुरू करने से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कल घोषणा की थी कि जल्दी ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। भारतीय रेलवे देश में माल परिवहन की परिभाषा बदल रहा है। माल ढुलाई में तेज, विश्वसनीय और किफायती समाधान प्रदान करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि पिछले रविवार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क और भारतीय रेलवे के 5 क्षेत्रों के बीच एक ही दिन में कुल 892 इंटरचेंज रेलगाड़ियां संचालित की गई। मंत्रालय ने कहा कि उपलब्धि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बढ़ती परिचालन गतिविधियों, मजबूत योजना ढांचे और सुदृढ़ यातायात प्रबंधन प्रणालियों को दर्शाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 8 जनवरी को आईपैक और प्रतीक जैन के कार्यालयों तथा आवास पर की गई छापेमारी के दौरान कथित तौर पर जब्त किए गए गोपनीय राजनीतिक डेटा को संरक्षित करने की मांग की गई थी। निदेशालय ने न्यायालय को सूचित किया कि आईपैक के परिसर से कोई दस्तावेज या डेटा नहीं लिया गया, जिसके बाद न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने पहले आरोप लगाया था कि ईडी ने कोयला भ्रष्टाचार के मामले की जांच के बहाने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज आईपैक के कंप्यूटरों से हटा दिए थे। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ईडी ने कोई सामग्री जब्त नहीं की और दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश।
सेंसेक्स 245 अंक की गिरावट के साथ 83,383 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक गिरकर 25,666 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे घटकर 90.29 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
आज पूरे देश में 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र ने नवा रायपुर स्थित सैन्य स्टेशन में इसका आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान 29 वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 500 से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवन स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी वर्दी का रंग और कार्यस्थल भले ही बदल जाए, लेकिन देशभक्ति और सेवा की भावना हमेशा एक जैसी रहती है।
साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं है, आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था, यहाँ व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है।
मुंबई के नौसेना बंदरगाह स्थित गौरव स्तंभ पर आज 10वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सुरक्षा संबंधी चेतावनी के लिए एक प्रायोगिक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों की अचानक आवाजाही से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। विशेष रूप से कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति में ये प्रायोगिक पहल जयपुर आगरा और जयपुर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर लागू की जा रही है, जिन्हें आवारा पशुओं की आवाजाही के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ऊर्जा भारत PTE लिमिटेड ने अबुधाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में कच्चे तेल की सफलतापूर्वक खोज की है। उन्होंने कहा कि ये खोज शिलाइफ क्षेत्र और हबशान जलाशयों में की गई है। श्री पुरी ने कहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। उन्होंने बताया कि ये उपलब्धि इंडियन ऑयल के वैश्विक अपस्ट्रीम क्षेत्र में विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय टीमों की तकनीकी उत्कृष्टता तथा समर्पण को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक लाभ देने की कोई योजना शुरू की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये पहल सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मंत्रालय के अनुसार पैकेज का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक ही सुगम खाता संरचना के अंतर्गत बैंकिंग और बीमा लाभों को एक व्यापक समूह प्रदान करना था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अरावली पर्वतमाला में पारिस्थित संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और अवैध खनन को रोकने के लिए अरावली की लगभग 97 किलोमीटर राजस्व भूमि को स्थायी संरक्षित वन घोषित किया गया है। नई दिल्ली में अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में 26 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि के पुनर्स्थापन के मिशन पर प्रकाश डाला। भारत ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा कि ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी जाती है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों सहित परिवहन के उपलब्ध साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विदेश मंत्रालय ने अपने परामर्श में ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है। ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास में रजिस्टर करने की सलाह दी गई है अगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है +98912810915 +98912810909 +98912810902 और +989932179359। दूतावास से ईमेल आईडी cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ईरान ने अमरीकी सैनिकों की सहायता करने वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमरीका देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो वो उनके देशों में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। खबरों के अनुसार ईरान ने अमरीका के सहयोगी देशों से ईरान पर अमरीका के हमले या किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधी बातचीत निलंबित होने की भी खबर है। 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के अंतर्गत आतंकवाद से निपटने को लेकर विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत और मलेशिया इसकी संयुक्त अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में आसियान के 11 सदस्य देशों और 7 सहभागी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 2 लाख रुपए के इनामी माओवादी सहित 29 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी गोगुंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि ये सभी क्षेत्र में कई नक्सल गतिविधियों में शामिल थे। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत के 285 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 3 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए थे। भारत के लिए केएल राहुल ने 92 गेंदों में नाबाद 112 रन की पारी खेली। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वहीं महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 143 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पोंगल जैसे त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने तमिल संस्कृति को पूरे देश और मानवता की साझा विरासत बताया। भारत ने पश्चिम एशियाई देश में जारी अशांति के मद्देनजर अपने नागरिकों से ईरान को तुरंत छोड़ने का आह्वान किया। सरकार ने कहा वो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और वहां अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आईपैक छापे पर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और राजकोट में मेजबान भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।